So take your Bibles once again.
और एक बार अपने हाथ में बाइबल लीजिए.
I was getting ready to say for the last time.
और मैं अभी आपको लास्ट बार कहना चाहूंगा.
But it shouldn't be for the last time for us, should it?
परंतु ये लास्ट बार के लिए नहीं होगा.
And turn to Hebrews chapter 13.
और इब्रानी उसका 13 अध्याय को निकालेंगे.
And someone read for us.
और कोई हमारे लिए पढ़े.
भद्र प्रेम स्थिर रहो, आतिथ्य सत्कारो न पासरो, जेनु तो द्वारा कहीं कहीं अज्ञात सारे दूत मानको आतिथ्य करियोचंती, आपणा मानको बंदी मानको सहबंदी स्वरूप ज्ञान करी पुणि निज देहधारी अटो बोली जाने क्लेश भोग करुथिबा लोक मानको स्मरण करे. विवाह समस्तक मध्यरे आदरणीय हो और ताहार सच्चे सूची थाउ, कारण ईश्वर पारदारिक ओ व्यभिचारी मानक विचार करते आचार व्यवहार रे धन लोभ शून्य हो, तुम मानक जहाँ किसी अच्छी से संतुष्ट थाओ, कारण से निजे कोई अच्छा आम्भे तुमको केवे हे छाड़ा ना, आम्भे तुमको केवे हे परित्याग करिबा ना, अतए आमे माने साहस पूर्वक कही पार प्रभु मोहर सहाय मु भय करिबी नाही, मनुष्य मोहर कौन करिवो. जो माने तुम मानको ईश्वर को वाक्य कहिथिले तुम मानको एपरि नेता मानको स्मरण कर, से मानको जीवन यात्रा रो शेष गति प्रति दृष्टि रखी से मानको विश्वास अनुकरी हो. जीशु ख्रीष्ट काले आज और चिरकाल समान अटंती, विविध और विपरीत प्रकार शिक्षा विचलित न हो, कारण खाद्य पदार्थ द्वारा नुहे मात्र अनुग्रह द्वारा हृदय स्थिरीकृत है भल. जो माने खाद्य द्रव्य प्रथा पालन करती से मानकर किछि लाभ होइना, जो योग्य वेदीर सामग्री तुम्हर उपासक मानक भोजन करिबा निमित्त अधिकार नाही, आम मानकर एपरि एक योग्य वेदी अछि, कारण जे सब पशुर रक्त पापार्थक बलि सत्वे महाजाजकों द्वारा महापवित्र स्थान को अणा जाए, सही सब पशुर शरीर छाणी बाहर दग्ध हुए, यदि सकाश जीशु मध्य आपणा रक्त द्वारा जेपर लोक को पवित्र करती लोक द्वार बाहर मृत्युभोग करे, अतए आस आम मैंने निंदा सह छाउर बाहर निकट को जाऊ, कारण एटा आम मान चिरस्थायी नगर ना, किंतु आम मैंने आगामी नगर अन्वेषण करूछु, एणु आस द्वारा आम मैंने ईश्वर को उद्देश्य प्रशंसा रूप बोली अर्थात नाम स्वीकार कर अष्टाधर फल नित्य उत्सर्ग करू, पर प्रकार अदान पासर ना, कारण बोली ईश्वर परम सदेश तुम मान ମୁଁ ସମସ୍ତ ନେତା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଇଟାଲିଆରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ।
So we talked before our break about those that have the rule over us.
Aur break se pehle hum baat kar rahe the ki jo hame agwa dete hain wo agwa karte hain unke bare mein baat kar rahe the।
And the great amount of responsibility that we bear as we listen.
Aur hamare liye utna zimmedari hota hai ki jitna wo log shiksha de rahe utna usi taraf se hum sune bhi।
And that they bear as they teach।
और वो जो शिक्षा दे रहे हैं उनका भी जिम्मेदार रहता है कैसे शिक्षा दे रहे हैं।
And he begins in verse 9, we're going to that parentheses that we talked about।
अभी वो 9 से 16 के अंदर देखिए कि पिछले समय बाकी सब देखे थे।
He says, be not carried about with diverse and strange doctrines।
लिखा जाता है It's 9, no?
Yes।
नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से ना भरमाए जाओ।
There is a difference between following
और यानी एक के पीछे जाना ये कुछ में अंतर है
and being carried
और लिए जाना ये दोनों में अंतर है
and it goes down to who we're listening to
और हम किसको या क्या सुन रहे हैं वो अंतर है
are we listening to those that are taking the position they have as a situation of responsibility
और हम ये दिया क्या सुन रहे हैं कि यानी जिसको हम सुन रहे हैं कोई ऐसा पोजीशन में है जो हमको सुनने के लिए वो दे रहे हैं
or are they only thinking of it as a position of honor and a way to receive things
और क्या खाली पोजीशन में हो के वो यानी हमको सुनने के लिए यानी सुनने के लिए कह रहे हैं
because those that don't know the truth can't teach you the truth
क्योंकि जो सच्चाई को जानते नहीं हैं वो आपको सच्चाई कभी सिखा नहीं पाएंगे
those that aren't walking in the truth can't teach you the truth
और जो सच्चाई की राह पे चल नहीं पाते हैं वे कभी आपको सच्चाई सिखा नहीं पाएंगे
because this is the living word of god
क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित कलाम है
those that teach should be living the word of god
so जो सिखाते हैं उसी हिसाब से जीवित कलाम को ही सिखाना पड़ेगा
and so he says diverse and strange doctrines
और यहां पे जैसे लिखा जाता है नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों
you can remember that word diverse from chapter 1
और एक अध्याय से ये जो जिसके बारे में लिखा जाता है नाना प्रकार के उपदेश बारे में आप जान पाएंगे
where god's making time pass in diverse manner
और परमेश्वर जो है वो नाना प्रकार से हमसे बात किया पहले
it means varied in different forms in different ways
और भिन्न-भिन्न जरिए भिन्न-भिन्न चीजों को इस्तेमाल करके व्यक्ति को इस्तेमाल करके
and when you think of that word strange
और जब यानी लिखा जाता है यानी strange
you can think about the
विपरीत लिखा जाता है
Korah and those that had followed him
जैसे कि कोरा
and those that had followed him
कोरा और उसके पीछे जो हो लिए
Korah said that to Moses and Aaron you should share the responsibility with us
और कोरा क्या कहने लगा मूसा को हारून को और तुमने बहुत अपने ऊपर ले लिया है अभी हमें दो
so they took coals from a different altar than the brazen altar
aur ye log kya kiye yani bedi ke aag nahi leke dusri jagah wo aag liye
Hophni and Phinehas not Korah
yeah it's Hophni ye Hophni aur Phinehas hain
and what they did is they brought strange fire before the lord
aur ye yani parmeshwar ke samne ye I think Nadab Abihu. Nadab Abihu. Hophni and Phinehas. Nadab Abihu. It's Leviticus 10.
So my brain is really
yeah, working, isn't it? From
Nadab and Abihu.
Yeah.
Yes. Thank you. Go ahead, correct
me. Sorry. It was Nadab Abihu. कोरह और हॉफ्नि फिनहस में नादब और अबीहु जो पीतल के बेदी से जो बेदी में आग था वो नहीं लेके दूसरी जगह से आग लिए
we all need correction
हमको यानी सबको यानी करेक्शन जरूरी है
But what they did is they took coals that were not from the brazen altar.
और वो लोग क्या किए कि ये लोग यानी जहां से आग लेना था वहां से आग नहीं लिए.
And they brought them in their censer to burn incense.
और वो यानी जो जहां पे आग रखते हैं धूप रखते हैं वो धूपदानी में लेके गए.
And they brought that before the Lord.
और परमेश्वर के सामने लेके गए.
And the Lord killed them.
और परमेश्वर उनको मार डाला वहां पे.
Struck them down.
वहां पे मार डाला.
Because they brought strange fire.
क्योंकि वो लोग एक यानी परमेश्वर जो आज्ञा नहीं दिए थे ऐसा एक आग लेके गए थे.
It wasn't according to his word.
ये परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं था.
He had given instruction for how the priests were supposed to approach him.
और परमेश्वर ने ये आदेश दिया था कैसे एक याजक और महायाजक उसके सामने आए किस रीति से.
And they decided they knew better.
और लेकिन ये समझने लगे कि ये बेहतर जानते हैं उनसे.
God doesn't accept your knowing better.
और परमेश्वर ये ग्रहण कभी नहीं करेगा कि आप अच्छा जानते हैं बोलके.
He says, approach me how I told you to approach.
परमेश्वर ये कहता है कि मेरे पास जैसे आना है उसी तरह आओ.
That is just as true as in the Old Testament.
और नया पुराना नियम में ये जैसा था.
As it is in the New Testament.
नए नियम में भी वैसा ही है.
He says, be not carried about with diverse and strange doctrines.
वो लिखा जाता है कि नाना प्रकार के उपदेशों से भरमाए ना जाए.
You notice that there is that word doctrine.
और जो यहाँ पे सिद्धांत और शिक्षा के बारे में लिखा जाता है.
Is plural.
और ये यानी बहुवचन है.
It's doctrines.
और यानी सिद्धांतों उपदेशों बोल के लिखा जाता है.
The word doctrine means teaching.
और इसका मतलब है शिक्षाएं.
And you can find when you study the New Testament.
और जब आप नए नियम को पढ़ रहे हैं पाएंगे.
That there is the doctrine of Christ.
और वहाँ पे एक मसीह का सिद्धांत और मसीह का शिक्षा है.
Singular.
ये यानी सिंगुलर है.
Or you have the doctrines of men.
और इंसानों की शिक्षा इंसानों के उपदेश जो प्लूरल है.
Or the doctrines of demons.
और जो भूतों की शिक्षा भूतों के उपदेश.
And diverse and strange doctrines.
और लिखा जाता है नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों.
You see, these things are incompatible with the doctrine of Christ.
और ये मसीह के शिक्षाओं के साथ तुलना में ये कुछ नहीं है.
This is the same thing as when Jude says the faith that was once delivered to the saints.
और ये वही चीज है जो यहूदा ने लिखे हैं विश्वास जिनको साधुओं के बीच में दिया गया है.
This book is our rule. This is our guide for faith and practice.
और ये किताब जो है ये हमारा एकमात्र यानी मूल उच्च है ताकि उस यानी इसको लेके हम विश्वास से बढ़ पाएं.
If someone stands up and starts teaching you something that doesn't agree with this book.
और कोई अगर ऐसा उठे और आपको शिक्षा देने लगे जो यहाँ पे नहीं है वो शिक्षा.
You have a few options.
और आपके पास कुछ ऐसे ऐसे यानी यानी options हैं.
You can get up and leave.
आप उठ के खड़े होके जा सकते हैं.
You can shout them down.
और आप वहाँ से खड़े होके चिल्ला सकते हैं.
Or you can do what the New Testament said to do with prophets.
और आप यानी नए नियम के भाव यानी भविष्यवक्ताओं के साथ क्या करना है आप जानते हैं आप उसके साथ वैसा करेंगे.
I wouldn't recommend that.
अब मैं ऐसा आपको नहीं कहूँगा कि ऐसा कीजिए बोल के.
Do not listen to strange and diverse doctrines.
और ये नाना प्रकार के ऊपरी उपदेशों को ना सुने.
Pay attention who you listen to.
आप किसको किस तरीके से सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए.
When you remember when Jesus asked Peter,
आप याद कीजिए जब यीशु मसीह पत्रस से कहा,
Will you also go away?
तुम भी जा सकते हो.
And Peter said, You have the words of life.
और पत्रस ने कहा कि तुम्हारे पास ही तो जीवन का स्रोत है.
To whom shall we go?
और हम किसके पास जाएं?
If the person standing before you is not giving you the words of life,
और अगर आपके सामने खड़े हुए वो व्यक्ति जो जीवन का ये वचन को नहीं दे रहा है,
then you as a church need to exercise your privilege to say you are not allowed to teach us.
तो कलीसिया होने के नाते आपको ये कहना पड़ेगा कि तुम्हें अनुमति नहीं है हमें शिक्षा देने की.
And if that is not a possibility for you, then go somewhere else.
अगर ये संभव नहीं है आपके लिए ऐसा कहना तो आप उठ के खड़े होके दूसरी जगह जा सकते हैं.
Your relationship with Jesus Christ is too vital for you to sit and listen to somebody who's not telling you the truth.
और आपका का रिश्ता यीशु मसीह के साथ उतना जरूरी है, ना कि कोई खड़े होके बाइबल के बाइबल में जो नहीं है वो प्रचार करना आप उसको सुने।
He gives us an example.
वो एक उदाहरण दे रहे हैं।
He says it's good for the heart to be established with grace.
Okay, लिखा जाता है क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है।
Not with meats.
और खाने के लिए नहीं, वस्तुओं से नहीं।
And he's going to compare again the altar of the Jews.
और अभी वो यहूदियों का जो बेदी था, बेदी को लेके तुलना कर रहा है।
And our altar.
और हमारे बेदी को लेके।
He says they go to an altar that are where they're sacrificing meats that does not profit them.
और वो ऐसे एक वेदी को जाते थे और वो यानी वो खाना को खाते थे जो उनके लिए फायदा नहीं था।
There is now no sacrifice for sin that is acceptable in God's eyes but Jesus Christ.
और ऐसा कोई अभी बलि बाकी नहीं है जो परमेश्वर ग्रहण करेगा, एकमात्र बलि यीशु मसीह को ही ग्रहण किया है।
He says we have an altar.
और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारा एक वेदी है।
Whereof they have no right to eat.
जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं है।
Those that do not believe in the Lord Jesus Christ have no place at the Lord's table.
जो परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते उनका कोई अधिकार नहीं परमेश्वर की मेज के ऊपर वो खाएं।
The only way that you have the privilege of eating there is through the blood of Jesus Christ.
और एक ही रास्ता है जो आप परमेश्वर के मेज से आप सहभागी हो पाए, वो है यीशु मसीह का लहू।
And he says, listen, this is how it works.
और वो कह रहे कि सुनिए ये ऐसे काम करता है।
They would take the sacrifice and they would take it outside of the city.
और वो यानी वो बलिदान को लेते थे और नगर के बाहर लेके जाते थे।
And that's where the body would be burned.
और वहाँ पे उस पशु को शरीर को वहाँ पे जलाया जाता था।
That was a picture for how they were going to treat Christ.
और वो एक छवि था कि आने वाले दिनों में मसीह को कैसे वो किया जाएगा, उसका एक छवि था।
That they viewed him as insignificant and not worthy to be their Messiah.
और ये लोग कैसे मसीह को यानी योग्य नहीं माने उनका मसीह होने के लिए।
So Jesus took that willingly.
और इसीलिए यीशु मसीह खुद अपने ऊपर ले लिए।
And he said, I'm going to be set apart from the old law.
और कह रहे हैं कि मैं उसे ये व्यवस्था को अलग कर रहा हूँ।
I'm going to be sanctified from it.
और मैं उसको शुद्ध ठहरा रहा हूँ।
And by being set apart, I'm going to set apart my people.
और ऐसे अलग करने में मैं लोगों को अलग कर रहा हूँ।
And he said, the writer says, let us go forth.
और इसीलिए लेखक कहते हैं आइए हम आगे बढ़ें।
Let us be with him outside the camp.
और आइए उस बाहर जाकर उससे मिले।
Outside the city.
और नगर के बाहर जाके मिले।
And bear his reproach.
और उसे वही निंदा को हम सहन करें।
The Jews after the death and resurrection of Jesus Christ.
और यहूदी जो थे यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद
would mock the Christians for not taking part in the sacrifices and in the holy days.
और यानी परब के दिन वो लोग यानी मसीह लोगों को निंदा कर रहे थे, ये लोग जो बलिदान के वो चढ़ाए हुए को नहीं खाते थे तभी।
And the writer is saying, take part of that willingly.
और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि उसी चीज को आप अपनी इच्छा से लीजिए।
Bear that reproach.
और वो जो निंदा आपको कर रहे हैं उसको सह लीजिए।
Do you remember that? Do you remember that word?
वो क्या आप वो इस सब को याद कर पा रहे हैं?
The word reproach.
और निंदा.
Look back in Hebrews 11.
और इब्रानी 11 में लिखा जाता है.
And read verse 25 and 26.
और 25 और 26 जब पढ़ेंगे लिखा जाता है.
विश्वास द्वारा मूसा बहुत से काम करने का उत्तर अंकारा को मकान को पुत्रों को भी खाते हैं और प्लास्टिक को ले पापों और जीवन को सिखों को भोगो जैसा ईसा को लोकना को संतों द्वारा
Moses esteemed the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt.
और मूसा जो है परमेश्वर के लोगों के साथ वो दुख उठाना अच्छा लगा उससे दाब मिस्र के धन को छोड़ के।
And the question from the writer of Hebrews is, do you esteem the reproach of Christ greater treasure than the riches of this world?
और यहाँ पे लेखक हमें वो कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह के लिए क्या आप निंदा सहन कर रहे हैं और आपके सामने जब दुनिया का सारे दौलत है उसको छोड़ के
Inside the camp,
और ये छावनी के अंदर
you were in the congregation, you were part of Israel.
आप यानी वो समूह है, इज़राइल के समूह हैं आप.
Every time the high priest went into the holy place and the holy of holies.
और जब वो महायाजक वो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में जाता था.
He had on the breastplate with the names of the tribes.
और उसके यहाँ पे छाती पे एक प्लेट रखा जाता था, इज़राइल का नाम वहाँ पे लिखा जाता था.
And he had on his shoulders the names of the tribes.
और यानी गोत्र का नाम यहाँ पे कंधे पे लिखा जाता था.
Showing that if you were part of Israel, he was representing.
और ये दिखाता था कि इज़राइल लोगों के बदले ये यानी प्रतिनिधित्व कर रहा है.
If you had sinned or you had done something that made you unclean,
अगर वो आप कुछ पाप किए हैं और ऐसा किए हैं जो आप अशुद्ध हो गए हैं,
you had to go outside the camp.
तो आपको वही छावनी के बाहर जाना पड़ेगा.
So for that period of time, you were not part of the congregation.
और उसी समय के लिए आप छावनी के अंदर नहीं रहेंगे.
So the high priest wasn't representing you.
और इसीलिए जो महायाजक वो आपको प्रतिनिधित्व करता है.
So you had to become clean to be able to come back in the camp.
ताकि यानी आप शुद्ध ठहराया जाए और छावनी के अंदर आए.
You see, in the Old Testament,
और पुराने नियम में,
if someone wanted to draw near unto God,
कोई अगर परमेश्वर के निकट आना चाहता है,
who was not Jewish,
जो यहूदी नहीं है,
they had to become Jewish.
और उनको यहूदी बनना पड़ता था.
They had to follow the law and become just like a Jew.
और यहूदी जैसे व्यवस्था का पालन करते थे वैसे करना पड़ता था.
They would be called a proselyte. A proselyte.
Proselyte. What
does it mean? It means basically that I have become like you.
Okay. यानी उन लोगों को जो गैर यहूदी थे वो उनको यहूदी बनना पड़ता था.
They would have to take part in all of the ceremonies.
और जितना भी उनका यानी पर्व था सारे उनको हिस्सा लेना था.
You can think of this with Ruth.
और रूथ के बारे में सोच सकते हैं.
She was a Moabite.
और वो एक मोआबाई था.
She had to become Jewish.
लेकिन उसको यहूदी बनना पड़ा.
She couldn't change her ethnicity.
और वो उसको यानी अपने आप को बदल डाला.
But she changed every outward form.
वो सारी चीजों को अपने जीवन में बदल डाला.
So that she could be counted part of the congregation of Israel.
ताकि वो इज़राइली की छावनी के अंदर गिना जा सके.
The New Testament is not that way.
और नया नियम जो है वैसा नहीं.
Jesus goes outside the camp.
यीशु मसीह छावनी के बाहर गए.
So that those who are going to bear his reproach and identify with him.
और जो यानी उसके लिए जो निंदा को सह रहे हैं.
Are outside the camp.
और जो बाहर हैं.
It's not based off of which tribe you're in.
और कौन सा यानी गोत्र का आप हैं अब ये मायने नहीं रखता.
There's no longer any requirement that comes before you but to trust him.
और कुछ आपको करने के लिए ये नहीं परंतु आप उसके ऊपर ही भरोसा रखे.
But you will bear reproach.
और परंतु आपको निंदा सहना पड़ेगा.
There will be things that will come upon you.
और ऐसा कुछ चीज है समस्या है आपके ऊपर वो आएगा.
It is without a doubt.
और ये इसमें निशंदेह है.
You can look up at your leisure.
और ये यानी आप अपने खाली समय में देख सकते हैं.
The rules about lepers in Leviticus 13.
और ले व्यवस्था 13 अध्याय में यानी कोढ़ के बारे में कोढ़ी के बारे में उनके व्यवस्था के बारे में.
The rules about criminals in Leviticus 24.
और ले व्यवस्था 24 में जैसे दोषी लोग अपराधी के व्यवस्था के लिए.
The rules about those that are defiled in Numbers 5.
और गिनती 5 में जो लोग अशुद्ध बन जाते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था था.
Those that were bearing filth in Deuteronomy 23.
और व्यवस्था विवरण 23 में जैसे लिखा जाता है जो लोग अशुद्ध हो जाते हैं उनके लिए क्या था व्यवस्था.
And you can identify with them.
और आप उनको यानी वहां पे आप तुलना कर सकते हैं देख सकते हैं.
Because that's who we are.
हम लोग ऐसे थे.
We're sinners.
हम लोग पापी थे.
We're defiled.
हम लोग अशुद्ध थे.
And we bear before Christ we bore our reproach.
और यीशु मसीह को जानने से पहले हम अपने निंदा को लेके जा रहे थे.
But we meet with him outside the camp.
अब परंतु हम उसे छावनी के बाहर मिले.
Outside the city.
और नगर के बाहर मिले.
And he cleanses us.
और वो हमें शुद्ध किया.
And he makes us pure.
और वो हमें पवित्र किया.
That's what the writer of Hebrews is telling us.
और यहाँ पे इब्रानी का लेखक यही हमें कहते हैं.
So he says again in verse 14.
और यहाँ पे वो 14 आयत में फिर कहते हैं.
For here we have no continuing city.
और यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं,
but we seek one to come.
वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं.
What did it say about Abraham in Hebrews 11?
और इब्रानी 11 में इब्राहिम के बारे में वो क्या कह रहे हैं?
What did he look for?
और वो किसको ढूंढ रहा था, देख रहा था?
He looked for a city which had foundations.
और वो एक ऐसा नगर को देख रहा था और जिसको यानी परमेश्वर ने बनाया.
Whose builder and maker is God.
वो परमेश्वर ने बनाया.
What did Abraham have a chance to do?
और इब्राहिम के पास चांस था कि नहीं?
He could have gone back.
वो अपने घर को जा सकता, अपने गांव नगर को जा सकता था.
But he looked for that city.
परंतु ये सामने जो नगर रखा हुआ था उसके लिए उसकी ओर देख रहा था.
What city did he look for?
और कौन सा नगर की ओर वो देख रहा था?
The city of Hebrews chapter 12.
और 12 अध्याय में जैसे लिखा जाता है नगर के बारे में,
We have come to Mount Zion.
और लिखा जाता है कि हम उस सियोन के पास आते हैं.
The city of the living God, the heavenly Jerusalem.
और यानी परमेश्वर जहाँ पर रहता है, वो पवित्र यरूशलेम.
By bearing his reproach, we recognize that we're pilgrims too.
और निंदा को सहने के द्वारा हम ये परिचय देते हैं कि हम भी यहाँ पे कुछ दिन के लोग हैं.
That we are passing through.
और हमको यहाँ से ही जाना है.
That even though you might be Indian,
हो सकता है आप भारतीय हो सकते हैं,
and a Christian,
आप मसीह हो सकते हैं,
you're not an Indian Christian,
आप यानी भारतीय मसीह नहीं है,
you are with Christ,
आप यीशु के साथ हैं,
your citizenship is in heaven,
आपका जो नागरिकता है वो स्वर्ग से है,
that's what we declare,
और ये हम घोषणा करते हैं,
it doesn't matter where we're from,
और ये मायने नहीं रखता हम कहाँ से हैं,
it matters where we're going,
लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं ये मायने रखता है,
we're going to the heavenly Jerusalem,
हम वही स्वर्गीय यरूशलेम की ओर जा रहे हैं.
Dwell with him forever.
हम वहाँ पे उसी के साथ हर दिन रहेंगे.
And so he says, because of that.
और इसीलिए वो कहते हैं.
That's what the therefore is in verse 15.
और इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है, इसीलिए 15 आयत में.
Through him.
और उसके द्वारा.
We're actually able to offer a sacrifice to God.
जो हम सर्वदा योग्य बन जाते हैं एक यानी स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए.
And you say, wait a minute.
और यहाँ पे अपेक्षा करना है.
You said there was no more sacrifices.
अभी आप कह रहे थे कि और बलिदान नहीं है.
There are no more sacrifices.
सही में और बलिदान नहीं है.
We've received the greatest sacrifice.
हम एक अच्छा बेहतर बलिदान को ग्रहण कर चुके हैं.
But now we're able to offer ourselves as a sacrifice.
परंतु हम अभी अपने आप को बलिदान के स्वरूप चढ़ाना है.
You can look at that in Romans 12.
आप रोमी 12 में देख सकते हैं.
But here he says we're able to offer the sacrifice of praise to God continually.
और यहाँ पे वो कहते हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल उसके नाम को अंगीकार करते हैं, चढ़ाया करते हैं.
The fruit of our lips giving thanks to his name.
और उन होठों हमारे होठों का फल जो उसके नाम को अंगीकार करता है.
There's a hymn in English.
और वहाँ यानी इंग्लिश में एक यानी गाना है.
Where the hymn writer says, "Oh, for a thousand tongues to sing my great Redeemer's praise."
और वो कहते हैं कि यानी हजारों यानी अंगीकार से मैं कह रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर जो मुझे छुटकारा दिया है.
He's crying out because he doesn't feel as though he has the ability to properly give praise to God.
और वो यानी चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ उसके पास तो कहने के लिए मौका है, परंतु वो कह रहे हैं कि मैं यानी ये अंगीकार करता हूँ.
And even if he had a thousand tongues himself to sing it, it would still be insufficient.
और वो कह रहा है कि अगर मेरे पास हजार भी अगर जीव होता और एक जीव के बदले हजार भी जीव होता और फिर भी ये कम पड़ जाता आपको महिमा के गाने के लिए.
Why when you experience joy do you cry?
और यानी जब आप रो रहे हैं तब आप क्यों आनंद महसूस कर रहे हैं?
Because it's hard to express joy.
क्योंकि ये यानी आनंद को बाहरी रूप में दिखाना ये असंभव है, कष्ट है.
There are things that are difficult to convey.
और कुछ कुछ चीज ऐसे होते हैं जो हमको किसी को दिखा नहीं सकते.
Because we're limited by our knowledge.
क्योंकि हम अपने ज्ञान से सीमित हैं.
By our experience.
हमारे अनुभव से सीमित हैं.
And by our ability to do things.
और हम सक्षमता से भी सीमित हैं जो करने के लायक हैं.
But in that day,
परंतु उस दिनों में,
what are we told?
हमें क्या कहा गया?
There will be no tears.
और लिखा जाता है कि वहाँ पे आंसू नहीं होगा.
And you say, well, that's talking about grief.
और आप कह सकते हैं यहाँ दुख के बारे में.
Certainly would be talking about grief.
हाँ, हो सकता है ये दुखों के बारे में.
But it's also talking about joy.
और परंतु ये आनंद के बारे में भी.
It's also talking about being able to express the things that here we have so much difficulty expressing.
और ये आनंद इसीलिए यहाँ पे रह के हम जितना करने यानी कहना चाहते हैं करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, परंतु आनंद तभी मिलेगा वहाँ पे उसके सामने जब रहेंगे.
Remember what we talked about in the tabernacle.
और आवास के तंबू के बारे में जो हमें कहा गया था, याद करें थोड़ा.
Every sacrifice had to go past the brazen altar.
और हर एक बलिदान जब चढ़ाया जाता है वो वेदी की ओर से ही लिया जाता है.
There was nothing offered that wasn't offered there.
और ऐसा कुछ यानी वहाँ पे भेंट नहीं है जो बलिदान ना किया हुआ हो.
That represents the cross of Christ.
और ये जो यीशु मसीह का क्रूस को दर्शाता है.
Because of the brazen altar.
और पीतल की वेदी के लिए ही.
You can have the altar of incense.
आपके सामने धूपवेदी आएगा.
Representing the prayers of God's people.
और जो यानी लोगों का प्रार्थना, परमेश्वर लोगों का प्रार्थना को दर्शाता है.
We can offer to God the sacrifice of praise because of the sacrifice of Christ.
हम यानी यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही हम परमेश्वर के सामने हमारे ओठों से निकले हुए हर एक निवेदन का प्रशंसा का बलिदान चढ़ा सकते हैं.
You know, we've talked about that word hallelujah.
हम पिछले समय में बात कर रहे थे हालेलुया शब्द के बारे में.
That means praise Jehovah.
उसके बाद उसका ना उसका मतलब है यानी यहोवा का प्रशंसा हो.
And that word is said the same way in over 186 languages around the world.
और 186 से बहुत ज्यादा जितनी भी भाषाएं हैं वही एक ही शब्द इस्तेमाल होता है हालेलुया.
They're saying it without knowing what they're saying.
और वो यानी वो तो कहते हैं परंतु नहीं जानते वो क्या कहते हैं.
They're praising God without even knowing they're praising God.
वो यानी वो परमेश्वर की प्रशंसा तो करते हैं परंतु नहीं जानते कि इसके द्वारा वे लोग परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं.
But God gives us something special.
परंतु यहाँ पे परमेश्वर कुछ विशेष हमें दे रहा है.
He says, "I will accept your sacrifice of praise because it's through the sacrifice of Christ."
और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सारे बलिदानों को ग्रहण करूंगा क्योंकि ये मेरे पुत्र यीशु मसीह का बलिदान सामने है.
We're able to praise him because of what he's done for us.
और हमारे लिए वो जो किया है इसलिए हम उसको आराधना करते हैं.
So that when you pray,
और तब आप जब प्रार्थना करते हैं,
and when you sing,
और आप जब गाना गाते हैं,
you are giving to God an acceptable sacrifice.
आप परमेश्वर को एक ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाते हैं.
And he tells us that he inhabits our praise.
और वो कह रहे हैं कि वो हमारे सारे वही यानी praises प्रशंसा को वो कभी नहीं भूलेगा.
That it is a sweet smelling aroma to him.
और ये एक सुगंध उसके सामने लाता है.
The meats of the physical sacrifice were never a sweet smelling aroma to him.
और जो शारीरिक बलिदान जब चढ़ाया जाता था पशु का वो यानी जो मेद से यानी जो सुगंध आता था अच्छा सुगंध नहीं था.
The writer of Hebrews says you didn't desire sacrifice, you prepared me a body.
और इब्रानी का लेखक ये कह रहे हैं कि परमेश्वर आपको बलिदान का बलिदान में संतुष्टि नहीं इसलिए आप एक बलिदान यानी शरीर को तैयार किए.
But now he says they'll accept our sacrifice.
परंतु यहाँ पे अभी कहते हैं वो हमारे बलिदान को ग्रहण करता है, प्रसन्न होता है.
Christ, he'll accept your praise.
आप जब परमेश्वर सामने यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे वो आपकी आराधना को ग्रहण करेगा.
So he says, offer those sacrifice of praise.
और इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि हर एक प्रकार की वही बलिदान को जो प्रशंसा का बलिदान देना चालू करे.
Because to do good and to communicate, verse 16.
और पर भलाई करना उदारता से पर भलाई करना.
These things are acceptable unto God.
और उदारता ये परमेश्वर सामने ग्रहण होता है.
He is well pleased.
अब वो प्रसन्न होता है.
What does Paul tell us in Ephesians chapter 2?
और इफिसियों के पत्री 2 अध्याय में पौलुस क्या कहता है?
He says, "For by grace are ye saved through faith."
और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिला है.
And that not of yourselves, it is a gift of God.
वो हमारे द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के एक उपहार है हमारे लिए.
Not of good works, lest any man should boast.
और कोई भले काम के लिए नहीं क्योंकि वहाँ पे कोई यानी घमंड ना करे.
For we are his workmanship.
हम उसके यानी हाथों के बनाए हुए हैं.
Created in Christ Jesus unto good works.
और हमको इसलिए बनाया गया ताकि यीशु मसीह की अच्छे कामों के लिए.
You see, the world will say, well, you've got to do good things to be able to come to God.
और दुनिया जब कहता है आपको ये फलाना फलाना काम अच्छा काम करना पड़ेगा परमेश्वर तक आने के लिए.
God says that's impossible.
आप प्रभु कहता है कि ये असंभव है.
Come to me through Christ.
वो कहते हैं कि यीशु के जरिए तुम मेरे पास आओ.
And when you come to me through Christ,
और जब तुम मसीह के जरिए मेरे पास आओगे,
suddenly you'll do things for me.
और तुम मेरे लिए कुछ करोगे तभी.
And he'll see those things as good works.
और वो चीज को वो अच्छा काम की नहीं देखेगा.
What's done for Christ will last.
और यानी यीशु के लिए जो किया गया वो यानी शेष रहेगा.
So do good.
इसीलिए उत्तम काम करना है.
And when he says to communicate, forget not.
और कह रहे हैं कि भलाई करना उदारता को ना भूलना.
I'm not sure what the word is in Aria.
भविष्य के नाम से अगर आप किसी को प्रभु के नाम से अगर देते हो ग्लास पानी.
Entertaining strangers.
और यानी स्वर्गदूतों की सेवा करना आतिथ्य करना.
Helping those who need help.
और जो जिन्हें सहायता चाहिए उनको सहायता करना.
What did we say at the beginning of the day?
और आज के दिन की शुरुआत में हमें क्या कहा गया?
What's the overarching theme of the whole chapter?
और ये पूरे अध्याय का यानी वो संक्षिप्त रूप में अगर बोलेंगे थीम क्या है?
Let brotherly love continue.
और भाईचारे का प्रेम आप में बने रहे.
Let that agape love of Christ flow through us.
और वही आगापे जो निस्वार्थ प्रेम है जो यीशु मसीह के जरिए हमारे जीवन में हमारे जीवन से बहता रहे.
First to God and then to everyone else.
पहले प्रभु के लिए उसके बाद दूसरों के लिए.
And God will accept that as our sacrifice of service.
और हमारी सेवा के रूप में प्रभु उसे बलिदान के स्वरूप ग्रहण करेगा.
With that, he's well pleased.
और उसी के द्वारा वो संतुष्ट होता है.
You want to hear from him, the words, well done, thou good and faithful servant.
और आप क्या ये सुनना चाहते हैं ए प्रभु से कि मेरे अच्छा दास विश्वस्त दास तुमने अच्छे काम किए.
The writer of Hebrews tells you, fulfill the two great commandments.
और इब्रानी का लेखक दो आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें कहता है.
Love Jesus Christ.
यीशु मसीह से प्रेम रखो.
Follow after him.
उसके पीछे हो लो.
And then by doing that, you'll be able to then love your neighbor as yourself.
और इसको करने के द्वारा आप अपने पड़ोसी को प्रेम कर सकते हो.
So love them as God loves them.
और जैसे परमेश्वर उनको प्रेम करता है, आप उनसे वैसे प्रेम रखो.
And by him, you will have fulfilled the law.
और उसके द्वारा आप व्यवस्था को सफल किए.
And God will be well pleased with you.
और परमेश्वर आपके लिए संतुष्ट होंगे.
Amen.
Amen.